नमस्ते, मैं आरव हूँ। 9 ली के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा। कीथ हे स्मिथ की नॉन एडहिसिव बाइंडिंग वॉल्यूम 1, जिसका उपशीर्षक बुक्स विदाउट पेस्ट और ग्लू है। हस्तनिर्मित पुस्तकों की संरचना पर केंद्रित एक व्यावहारिक और वैचारिक मार्गदर्शिका है। यह पारंपरिक गोंद, भारी प्रेस या जटिल मशीनों के बिना पुस्तकें बनाने की विधियां प्रस्तुत करती है। संशोधित और विस्तारित संस्करण में कागज की तैयारी, मोड़ने, मापने, सिलाई के छेद चिन्हित करने और आवश्यक साधारण औजारों से आरंभ करके अनेक बंधन संरचनाओं तक क्रमबद्ध पहुंच बनाई गई है। पुस्तक में पैम्फलेट और स्टैप बाइंडिंग जैसे अपेक्षाकृत सरल रूपों से लेकर लॉन्ग स्टिच और कॉप्टिक सिलाई जैसे अधिक जटिल ढांचों के निर्देश और विस्तृत रेखाचित्र शामिल हैं। इसका उद्देश्य केवल किसी तैयार पांडुलिपि को बांधना नहीं है। स्मिथ के अनुसार पुस्तक की भौतिक संरचना, उसके पृष्ठों का खुलना, पाठक की गति और दृश्य रूप सब सामग्री के अर्थ से जुड़े निर्णय हैं। इसलिए यह पुस्तक शिल्प निर्देशिका होने के साथ कलाकार पुस्तक निर्माताओं के लिए डिजाइन सोच का स्रोत भी है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, गोंद रहित बंधन को स्वतंत्र संरचनात्मक भाषा के रूप में देखना। इस पुस्तक का केंद्रीय विचार यह है कि बिना गोंद के पुस्तक बनाना केवल सामग्री या उपकरणों की कमी से निकला विकल्प नहीं है, यह एक अलग संरचनात्मक भाषा है। धागा, तह, छेद, कवर और कागज की परतें स्वयं पुस्तक को जोड़े रखती है। फलतः जोड़ने की प्रक्रिया छिपती नहीं, बल्कि अक्सर दृश्य अनुभव का हिस्सा बनती है। खुली रीढ़, दिखाई देती सिलाई या कवर में लिपटे धागे पाठक को यह समझने देते हैं कि वस्तु कैसे बनी है। यह दृष्टि उन बंधनों से भिन्न है जिनमें गोंद रीढ़ को स्थिर तो करता है, लेकिन निर्माण की प्रक्रिया को आवरण के भीतर छिपा देता है। स्मिथ ऐसे निर्णयों को सामग्री से अलग नहीं मानते। किस प्रकार का कागज चुना गया, पृष्ठ कितनी दूर तक खुलते हैं, धागे की दिशा क्या है और कवर कितना लचीला है, ये सभी बातें उपयोग और अर्थ दोनों बदलती है। विशेषकर कलाकार पुस्तक में यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि अनुक्रम, छवि, स्पर्श और पृष्ठ पलटने की गति सामग्री के ज्ञान को प्रभावित करते हैं। पुस्तक इसीलिए बंधन को सजावटी अंतिम चरण नहीं, आरंभिक डिजाइन निर्णय के रूप में स्थापित करती है। इसका व्यावहारिक निष्कर्ष भी स्पष्ट है। जब संरचना को पहले सोचा जाता है तो निर्माताओं को कागज के भार, फोलियो की संख्या और अपेक्षित खुलाव के अनुसार विधि चुनने का आधार मिलता है। दूसरा, तैयारी के चरण में कागज, तह और छेदों की सटीक योजना। निर्देशों का पहला प्रमुख हिस्सा बंधन से पहले की तैयारी पर ध्यान देता है। यह जोर आवश्यक है, क्योंकि गैर चिपकाव सिलाई में छोटी माप त्रुटि भी रीढ़ के तनाव, पृष्ठों की समानता और कवर के संतुलन को बिगाड़ सकती है। पुस्तक कागज के गुणों, दाने की दिशा, मोड़ने, मापने और सिलाई स्थानों को अंकित करने जैसे विषयों को आधारभूत कौशल के रूप में रखती है। कागज की दिशा का विचार विशेष उपयोगी है, क्योंकि सही दिशा में मोड़ा गया कागज सहज खुलता है और बार बार उपयोग पर कम प्रतिरोध करता है। इसके विपरीत, गलत दिशा में कठोर मोड़ फोलियो को उभरने या विकृत होने की ओर ले जा सकते हैं। सिलाई स्टेशनों की योजना भी केवल छेदों की पंक्ति नहीं है, उनकी दूरी धागे के खिंचाव, रीड की मजबूती और दृश्य लय निर्धारित करती है। स्मिथ की विधि में रूलिंग, मार्किंग और पियर्सिंग को अलग कार्यों की तरह समझना उपयोगी है, ताकि एक समान माप कई खंडों में दोहराई जा सके। यह भाग साधारण उपकरणों की पर्याप्तता भी दिखाता है। सुई, कैंची और कुछ छोटे उपकरणों से आरंभ संभव है, पर उनका अनुशासित प्रयोग अनिवार्य रहता है। नए अभ्यासियों के लिए यह वास्तविक पाठ यह है कि सफल बंधन की शुरुआत सिलाई से नहीं, सुविचारिक तैयारी से होती है। तीसरा, सरल पैम्फलेट से कॉप्टिक सिलाई तक बढ़ती तकनीकी जटिलता। पुस्तक की उपयोगिता उसके क्रमिक तकनीकी विस्तार में है। इसमें अनेक बंधन रूप दिए गए हैं, जो सरल पैम्फलेट और स्टैप बाइंडिंग से आरंभ होकर लॉन्ग स्टिच तथा कॉप्टिक सिलाई जैसे जटिल रूपों तक जाते हैं। इस व्यापकता का अर्थ केवल अधिक परियोजनाएं देना नहीं है, अलग अलग संरचनाएं अलग उपयोगी समस्याओं का समाधान करती हैं। एक छोटी एकल खंड पुस्तिका के लिए उपयुक्त पैम्फलेट सिलाई को बहुत अधिक पृष्ठों वाले या बार बार खुलने वाले काम पर लागू करना उचित नहीं होगा। इसी तरह खुली रीढ़ वाली सिलाइयों में पृष्ठों के फैलकर खुलने की क्षमता प्रमुख लाभ हो सकती है, जबकि कुछ परियोजनाओं में सुरक्षित कवर और संकुचित आकार अधिक महत्वपूर्ण होंगे। लॉन्ग स्टिच और कॉप्टिक रूपों का अध्ययन यह समझने में मदद करता है कि धागा केवल पृष्ठों को बांधता नहीं, रीढ़ पर भार वितरित भी करता है। पुस्तक जटिल प्रक्रियाओं के बाद संक्षिप्त रूपरेखा भी देती है, जिससे अभ्यास के समय पूरे विवरण में लौटे बिना क्रम दोहराया जा सके। फिर भी इसका क्रम किसी कठोर पाठ्यक्रम जैसा नहीं है, पाठक अपनी सामग्री और उद्देश्य के अनुरूप विधि चुन सकता है। आरंभिक पाठक को सरल रूपों पर हाथ स्थिर करना चाहिए, जबकि अनुभवी निर्माता अधिक खुलाव। दिखाई देने वाली सिलाई या मिश्रित कवर संरचनाओं की मांग वाले काम के लिए आगे की विधियों का उपयोग कर सकता है। चौथा, रेखाचित्र आधारित निर्देश और हाथ की गति को समझने की चुनौती नॉन एडहेसिव बाइंडिंग की सबसे पहचानी जाने वाली विशेषताओं में उसके विस्तृत रेखाचित्र है। सिलाई संबंधी निर्देशों में शब्द अक्सर दिशा बताने के लिए पर्याप्त नहीं होते, क्योंकि धागे की हर चाल में सुई का प्रवेश निकास पिछले फंदे से संबंध और तनाव का नियंत्रण एक साथ समझना पड़ता है। रेखाचित्र इस क्रम को दृश्य रूप में विभाजित करते हैं। पाठक देख सकता है कि किसी चरण में धागा किस ओर जा रहा है और अगला जोड़ किस स्थान पर बनना है। यह विशेष रूप से कॉप्टिक सिलाई या अंतिम कवर को बांधने जैसे चरणों में उपयोगी है, जहां एक गलत दिशा अगली पूरी पंक्ति को प्रभावित कर सकती है। पुस्तक में लिखित चरण और चित्र एक दूसरे के पूरक है, लेकिन पाठक प्रतिक्रियाओं से यह भी स्पष्ट है कि शुरुआती व्यक्ति को इसकी सूचना घनता चुनौतीपूर्ण लग सकती है। इसलिए इसका सर्वोत्तम उपयोग पढ़ते पढ़ते तुरंत निर्माण करने के बजाय पहले चित्रों में क्रम पहचानने फिर नमूना फोलियो पर अभ्यास करने से होता है। चित्रों को क्रमांकित प्रक्रिया की तरह देखने से हाथ की गति का मानसिक मानचित्र बनता है। यह पुस्तक की सीमा भी बताता है। यह किसी संक्षिप्त शुरुआती परियोजना पुस्तिका की तरह तुरंत परिणाम देने के लिए नहीं लिखी गई। इसकी शक्ति संदर्भ ग्रंथ होने में है, जहां अभ्यासकर्ता बार बार लौटकर किसी खास सिलाई अनुक्रम, कवर जोड़ या रीढ़ संरचना को जांच सकता है। अंत में कलाकार पुस्तक में सामग्री, प्रयोग और पाठ की अनुभव का संबंध। स्मिथ की पुस्तक को सामान्य हस्तशिल्प मैनुअल से अलग करने वाला पक्ष उसका कलाकार पुस्तक केंद्रित दृष्टिकोण है। यह पुस्तक को केवल पाठ या चित्रों का पात्र नहीं माना गया। उसका आकार, किनारों का खुलना, रीढ़ का दृश्य रूप और पृष्ठ पलटने की क्रिया पाठ की अनुभव में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। यदि किसी काम में विस्तृत छवियों को सपाट खुलना है, तो बंधन का चुनाव उस आवश्यकता का समर्थन करना चाहिए। यदि उद्देश्य क्रम अंतराल या स्पर्श के माध्यम से अर्थ बनाना है, तो कवर और सिलाई की दृश्य उपस्थिति भी रचना का भाग हो सकती है। स्मिथ का आग्रह यह नहीं कि हर पुस्तक का बंधन अत्यधिक जटिल या प्रमुख दिखे, उनका तर्क अधिक संतुलित है। संरचना को सामग्री की सेवा करनी चाहिए, ना कि केवल अपनी तकनीकी चतुराई प्रदर्शित करनी चाहिए। इसीलिए पुस्तक में समकालीन कलाकारों और बुकबाइंडरों के काम के छायाचित्र भी संदर्भ देते हैं। वे बताते हैं कि एक ही मूल सिद्धांत अलग रचनात्मक उद्देश्यों के लिए भिन्न रूप ले सकता है। इस दृष्टि का व्यावहारिक लाभ यह है कि निर्माता किसी विधि की नकल करने के बजाय चयन के कारणों पर विचार करता है। उसे पूछना पड़ता है कि चुना गया बंधन पृष्ठों की गति, सामग्री की पहुंच और काम के दृश्य स्वभाव को कैसे बदलता है। यही प्रश्न तकनीकी कौशल को विचारपूर्ण पुस्तक निर्माण में बदलता है। निष्कर्ष में, नॉन एडहेसिव बाइंडिंग वॉल्यूम 1 उन पाठकों के लिए सबसे उपयोगी है जो हस्तनिर्मित पुस्तक को टिकाऊ वस्तु और विचारपूर्ण कलात्मक माध्यम दोनों रूपों में समझना चाहते हैं। पुस्तक कला के विद्यार्थी, प्रिंट मेकर, फोटोग्राफर, जर्नल निर्माता, पुस्तक कलाकार और पारंपरिक गोंद आधारित तरीकों के विकल्प खोज रहे बाइंडर इससे विशेष लाभ ले सकते हैं। शुरुआती पाठक भी इसमें प्रवेश कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मूल तैयारी और सरल पैम्फलेट रूप मौजूद है। लेकिन इसे धीरे धीरे अभ्यास करने वाली संदर्भ पुस्तक मानना अधिक यथार्थवादी होगा। जटिल सिलाइयों के लिए धैर्य, नमूने बनाना और रेखाचित्रों को बार बार पढ़ना आवश्यक है। अनुभवी बाइंडर के लिए इसका लाभ संरचनाओं की विविधता और चयन के पीछे की डिजाइन सोच में है। कई बुक बाइंडिंग निर्देशिकाएं किसी एक परियोजना को जल्दी पूरा कराने पर केंद्रित होती है, जबकि स्मिथ की पुस्तक सामग्री, कार्य, दृश्य रूप और पाठकीय अनुभव के आपसी संबंध पर जोर देती है। भारी उपकरणों के बिना काम करने की इसकी प्रतिबद्धता इसे छोटे स्टूडियो, कक्षा और घरेलू अभ्यास के लिए भी व्यावहारिक बनाती है। साथ ही यह सुविधा को कला का विकल्प नहीं बनाती। इसकी विशिष्टता विस्तृत सिलाई निर्देशों,